आज से थोड़े दिनों के लिए श्रीमद् भागवत में श्रीमती कुंती महारानी की जो कृष्ण के प्रति स्तुतियां हैं उनकी चर्चा हम करने वाले हैं। महारानी कुंती की स्तुति श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के आठवें अध्याय में पाए जाते हैं। 26 श्लोक हैं, 18वें श्लोक से आगे 26 श्लोक। बहुत प्रसिद्ध ये स्तुतियां हैं, भक्ति से भरे हुए हैं ये प्रार्थनाएं, और न केवल इसमें हमें कुंती महारानी की भक्ति स्पष्ट रूप से दिखने में आएगी, उनकी शरणागति, परंतु जो कुंती महारानी के हृदय में सारे शास्त्रों के सार का ज्ञान था वो भी स्पष्ट रूप से प्रकट होगा। वैसे वैदिक काल में केवल जो लड़के होते थे वो गुरुकुल में जाया करते थे। ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि जो लड़कियां हैं, छोटी बच्चियां, उनको भी कहीं स्कूल कॉलेज में भेजा जाता था। ऐसा कहीं भी वर्णन नहीं है। छोटी बच्चियों को, लड़कियों को अपने घर में ही उपदेश दिया जाता था, और उनके अध्यापक होते थे उनके माता पिता, उनके बुजुर्ग। कभी कभी अध्यापकों को, अध्यापिकाओं को घर में बुलाया जाता था, और घर की जो संस्कृति थी वही प्रमुख रूप से लड़कियों के लिए उपदेश का एक मार्ग था। वैदिक संस्कृति इतनी अच्छी है कि स्वाभाविक रूप से जो बच्चे होते थे घर में रहकर ही, अपने बुजुर्गों को देखकर ही सुसंस्कृत हुआ करते थे। अलग से कोई प्रशिक्षण स्कूल कॉलेज में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी, खास करके बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए। तो हम देखते हैं कि घर में अगर बच्चों को संस्कार देना है तो बड़ों को कितने प्रामाणिक तौर से बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि बड़ों को देखकर ही बच्चे उनके पीछे पीछे चलते हैं। अगर घर में झगड़े वगैरह होते हैं तो बच्चे भी उसी प्रकार से उस स्वभाव के, उस वृत्ति के बन जाएंगे। अगर घर में भक्तिमय वातावरण है, माता पिता और अन्य बुजुर्ग सब श्री कृष्ण की भक्ति बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, वो भी नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वही आदत जो है बच्चों में बन जाती है। तो हालांकि बच्चियां, लड़कियां वैदिक काल में स्कूल कॉलेज में नहीं जाते थे, फिर भी उनको सारे शास्त्रों का ज्ञान हो जाता था। कुंती महारानी के पास कोई डिग्री नहीं थी बीए, एमए, पीएचडी की, परंतु उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर हम आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि सारे शास्त्रों का सार उनको पता है, जो कि शायद आज के पीएचडी, जो दर्शन शास्त्र में, फिलोसफी में पीएचडी करने वालों को शायद नहीं होगा, वो सारे शास्त्रों का सार उनको है। और अपने प्रार्थनाओं के माध्यम से कुंती महारानी ने हमको अनेक उपदेश दिए हैं। कुंती महारानी महिला है, स्त्री है, परंतु भगवान कृष्ण के भक्ति मार्ग में अपना जो लिंग है, चाहे हम स्त्री हों या पुरुष हों, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वैदिक सभ्यता में स्त्री पुरुष का विचार होता है। वैदिक यज्ञ संपन्न करने के लिए हालांकि पति पत्नी दोनों आवश्यक हैं, लेकिन ऐसे कई कार्य होते हैं जो केवल पुरुष करते हैं, जैसे कि श्राद्ध देना वगैरह, कई ऐसे चीजें हैं। केवल पुरुषों को ब्राह्मण कुल में भी गायत्री मंत्र दिया जाता था, यज्ञोपवीत किया जाता था, वेदों को पढ़ने का जो अनुमति है वो दी जाती थी, स्त्रियों को नहीं दी जाती थी। संस्कार करने के लिए महिलाएं पुराण पढ़ सकती थी लेकिन वेद शास्त्र नहीं। तो ऐसे वैदिक पद्धति के अनुसार थोड़ा भेद है, परंतु भक्ति मार्ग में कोई भेद नहीं है। चाहे कोई स्त्री हो या पुरुष हो, समान दृष्टि से सब भगवान कृष्ण की भक्ति करके चरम सीमा की प्राप्ति कर सकते हैं। आजकल कलयुग में लोगों को वैदिक सभ्यता के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, और आजकल हरेक व्यक्ति, चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे किसी भी वर्ग का क्यों न हो, वर्ण का क्यों न हो, सभी लोग एक समान बनना चाहते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है। तो इस कृत्रिम सामाजिक व्यवस्था की वजह से इतना उत्पात समाज में हो रहा है। तो आजकल के लोगों की वृत्ति को देखते हुए अगर हमें समाज में शांति चाहिए तो केवल ही भक्ति मार्ग ही एकमात्र मार्ग है, और इस मार्ग में सभी लोग संतुष्ट हो सकते हैं, सभी को अवसर मिलता है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। वैसे आध्यात्मिक सभ्यता में भी सबको अवसर मिलता था, लेकिन सबकी भूमिकाएं अलग हुआ करती थी। लेकिन आज लोग इस विभाजन को गलत समझते हैं, केवल पुरुषों को ऐसे क्यों, केवल स्त्रियों को ऐसे क्यों नहीं, यह नहीं, तो इतने सारे तर्क लोग करते हैं। तो आजकल ये तर्क का कोई सवाल नहीं, भक्ति मार्ग में सब सम्मिलित हो सकते हैं। और कुंती महारानी उसके एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण है। कुंती महारानी की भक्ति हम सबके लिए अनुसरणीय है, और जो भावना, जो शरणागति उन्होंने न केवल अपने प्रार्थना में लेकिन अपने जीवन से उन्होंने व्यक्त किया, उससे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। भक्ति के कई अंग हैं, जैसे आप जानते हैं। प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसा पिता विष्णु भक्ति चेन नव लक्षणा। ये नौ लक्षण है भक्ति के, जो श्रवण कीर्तन से शुरू होते हैं, उनमें से वंदनम भी है। वंदनम मतलब प्रार्थना, स्तुति, भगवान के प्रति प्रार्थनाएं अर्पण करना। भक्ति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह के सामने खड़े होते हैं, तो बड़े भक्ति भाव से, हृदय से हमें भगवान की कृपा की याचना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए वो हम कुंती महारानी की स्तुति से सीख सकते हैं, अन्य महान भक्तों की स्तुतियों से, प्रार्थनाओं से सीख सकते हैं। साधारणतः जो भक्ति मार्ग में इतने तल्लीन नहीं है, वो जब भगवान के सामने आते हैं मंदिर में, तो कोई भौतिक चीज मांगते हैं भगवान से। लेकिन कुंती महारानी ऐसे नहीं कर रही है, इसलिए ऐसे महान भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनकर हम जान सकते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किस भाव से करना चाहिए, क्या पूछना चाहिए, क्या मांगना चाहिए भगवान से, किस तरह से भगवान की प्रशंसा करनी चाहिए। ये सब हम सीख सकते हैं। और एक बात यह है कि जो भगवान के भक्तों के हृदय में छुपी हुई भक्ति होती है, उसको हम कैसे समझ सकते हैं। जो हृदय की बात है, कभी ना कभी वो जबान से आएगी ही। अगर किसी व्यक्ति के हृदय में ईर्ष्या है, तो वो ईर्ष्या भी हृदय से, मुंह से, जबान से निकल के ही रहेगी, आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति में। उसी प्रकार से अगर किसी के हृदय में प्रेम है, भक्ति है, वो भी किसी न किसी तरह से प्रकट होगी मुख के माध्यम से। तो महान भक्तों को हम सुनना क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनके मुख से क्या निकलता है, उनके हृदय की जो भक्ति है वो शब्द रूप में निकलती है। और जितनी ज्यादा भक्ति उस भक्त के हृदय में है, तो उस भक्त के वचनों में, उसके शब्दों में उतनी ज्यादा भक्ति की शक्ति होगी। और फिर ये शब्द जो है, जब हमारे हृदय में कर्णों के माध्यम से प्रवेश करेंगे, तो हमारे हृदय में एक मंथन करेंगे,
एक तरह का उत्पाद कर देंगे हमारे भौतिक जीवन में, जिससे कि हमारे भौतिक धारणाएं जो है वो नष्ट हो जाएंगी, शुद्ध भक्ति जागृत हो जाएगी। तो भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनना ये बहुत जरूरी है, क्योंकि उनकी भक्ति भाव को हम ग्रहण कर रहे हैं। साथ साथ में, क्योंकि इस भक्ति के भरे हुए हृदय से ये प्रार्थना निकल रही है, तो सारे धर्म के जो रहस्यमय गूढ़ तत्व हैं, वो उन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। तर्को अप्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नसा ऋषि यस्य मतम न भिन्नम। अगर आपको धर्म क्या है ये जानना है, तर्क से नहीं जान सकते, केवल शास्त्रों को पढ़ के नहीं जान सकते, ये वेद शास्त्र पढ़ो, ये उपनिषद पढ़ो, नहीं। अलग अलग जो मुनि ऋषि होते हैं उनके भिन्न भिन्न मत होते हैं। धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायं महाजनो येन गतः स पंथा। जो धर्म का तत्व है वो महान भक्तों के हृदय में छुपा हुआ है, और इसलिए हमें महाजनों के पद चिन्हों में चलना चाहिए। महाजनो येन गतः स पंथा, जैसे महाजन चलते हैं, जैसे महाजन कहते हैं, वैसे हमें करना चाहिए। तो कुंती महारानी को भी महाजनों में से एक हमें मानना चाहिए। महाजन जो महान व्यक्ति हैं, महान कौन होता है? जो बहुत प्रतिष्ठित है समाज में, जो बहुत धनवान है, जो बहुत सुंदर है? नहीं, महान वो होता है जिसने सबसे महान व्यक्ति श्री कृष्ण के शरण में जाकर हमको सिखलाया है कि महान क्या चीज है, सबसे महान कौन है? श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण के भक्त ही सबसे महान है। तो उनकी प्रार्थनाओं से हम धर्म के सूक्ष्म तत्वों को पहचान सकते हैं। भक्तों की प्रार्थनाओं में सबसे सूक्ष्म दार्शनिक तत्व भी उपस्थित होते हैं। इसलिए किसी को अगर दर्शन समझना है, फिलॉसफी समझना है, भगवान भगवत तत्व को समझना है, तो भगवान के भक्तों की प्रार्थनाओं को सुनना है। तरह तरह की प्रार्थनाएं हैं। वैसे बताया जाता है कि प्रमुखतः तीन तरह की प्रार्थनाएं हैं। एक है लालसामयी प्रार्थना, जिसमें भक्त कोई आध्यात्मिक लालसा की याचना करता है कि मैं गोलोक वृंदावन में आपकी इस तरह से सेवा करना चाहता हूं, या मैं वृंदावन में निवास करना चाहता हूं। जब जन्माष्टमी के समय कृष्ण कथा हो रही थी, उस समय हमने देखा रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना कर रहे थे, निज निकट निवास देही गोवर्धनत्वम। यह भी एक लालसामयी प्रार्थना है कि मैं आपके निकट निवास करना चाहता हूं, तो ये मुझे आप निवास दीजिए, ये आशीर्वाद मेरे ऊपर दीजिए। तो ये एक प्रकार की लालसामयी प्रार्थना है। दूसरी तरह की प्रार्थना है दैन्यबोधिका, जब भक्त अपने आप को बहुत दीनहीन नीच समझता है। भक्तों के लिए स्वाभाविक होता है कि वो अपने आप को हमेशा नीच समझते हैं, पापी समझते हैं। जितना ज्यादा व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ने लगता है, उतना ही ज्यादा वो अपने आप को नीच समझता है। जब व्यक्ति भक्ति मार्ग में आता है परंतु कनिष्ठ होता है, तो अपने आप को बहुत अच्छा समझता है भक्त। अरे मुझे अभी भक्ति मार्ग का पता हो गया है, अन्य लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं, देखो मैं कितना अच्छा भक्ति करता हूं, मैं कितने कट्टर नियमों का पालन करता हूं। उसके मन में थोड़ा घमंड आ जाता है। घमंड आना मतलब कनिष्ठ, और नम्र होना और अपने आप को दीन समझना, ये भक्ति में प्रगतिशील भक्त का लक्षण है। तो जब व्यक्ति ऐसे प्रार्थना करता है, मो समपतित प्रभु ना पाई बिहार, नरोत्तम दास ठाकुर चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जैसा पतित आप कहीं नहीं पाएंगे, आप पतित पावन नाम से विख्यात हैं, तो मेरा नंबर पहला है आपके लिस्ट में, जिनका उद्धार करने के लिए आएंगे आप, उसमें उस लिस्ट में मेरा नंबर पहला है, तो मुझे पहले ही आप कृपा दीजिए, क्योंकि मैं सबसे योग्य हूं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि मैं सबसे नीच हूं। नरोत्तम दास ठाकुर ऐसे नीच है नहीं, वो तो शुद्ध भक्त हैं, परंतु उनकी भावना ऐसी है। तो ऐसी प्रार्थनाओं को दैन्यबोधिका प्रार्थना कहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर की सारी प्रार्थनाएं प्राय इस भाव में है, मैं कितना पापी हूं, हमारा जीवन सदा पापी रहता, ना ही को पुण्य रलेश, कि मेरा जीवन सिर्फ पापों से भरा हुआ है, पाप पुण्य का कोई लेश मात्र भी कोई निशान नहीं है। तो तीसरी तरह की प्रार्थना है संप्रार्थनात्मिका, जो भक्त बड़े फीलिंग से, भावना से, बड़े भक्ति भाव से अपने प्रार्थनाओं को अर्पण करता है भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में। कुंती महारानी की प्रार्थना भी इसी प्रकार की है, जो कुंती महारानी बड़े निस्सहाय भाव से पूरी तरह से भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर रहकर वो प्रार्थनाएं कर रही हैं। हालांकि एक दृष्टि से देखा जाए तो तीनों तरह के प्रार्थना ऐसे नहीं कि अलग अलग विभाग है, मिलते जुलते इनका संबंध है। जो दैन्य बोधि का प्रार्थना वो भी तो भावना से बोले जाते हैं, लेकिन विशेष करके अगर देखा जाए तो कुंती महारानी की प्रार्थना इसी प्रकार से भाव भक्ति भाव से भगवान के संग के प्राप्ति के लिए भगवान की कृपा की याचना करते हुए वो करती हैं। और ये प्रसंग कब होता है, जब कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया तो उस समय दुर्योधन की हत्या भीमसेन ने की अपने गदा से, और उस समय श्री कृष्ण ने इशारा करके कहा था भीमसेन से कि गदा यहां जंघाओं पर मार दो, ऐसे इशारा किया था। और उस समय भीमसेन ने इस इशारे को देखा और गदा चलाया। दुर्योधन को आश्चर्य हो गया क्योंकि इस प्रकार से गदा चलाना ये युद्ध के नियमों के खिलाफ है। युद्ध में भी तरह तरह के नीति और नियम हुआ करते थे, आजकल तो कोई नीति नियम नहीं, युद्ध की बात तो दूर है, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में भी कोई नियम नीति का सवाल नहीं। उस समय वैदिक सभ्यता में युद्ध के लिए भी नीति और नियम हुआ करता था और सारे योद्धा इस नियम को नीति का पालन किया करते थे कि अगर हमसे कोई कमजोर व्यक्ति है तो उसके साथ हमें युद्ध नहीं करना है, या कोई अस्त्र के बिना है, अस्त्र उसके पास नहीं है, खाली हाथ है तो हमें भी खाली हाथ होना चाहिए, उसके पास जो अस्त्र है वो हमारे पास होना चाहिए, अगर उसके पास तलवार है तो उससे ज्यादा शक्तिशाली चीज हमें नहीं इस्तेमाल करना, कोई हमें पीठ दिखाता है तो उसके ऊपर तीर नहीं चलाना चाहिए, अगर कोई अकेला है तो हम पांच जन उसके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ऐसे कई नियम हुआ करते थे, उनमें से एक नियम यह था कि गदा जो है वो कमर के नीचे कभी नहीं चलाना चाहिए, लेकिन भीमसेन ने कमर के नीचे चलाया, जंघाओं पर चला दिया गदा, और वो भी क्यों, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा। तो श्री कृष्ण ने उनको कहा कि एक ऐसे कार्य करो जो कि नियमों के खिलाफ है। तो क्या श्री कृष्ण ने अनैतिक कार्य किया, श्री कृष्ण ही नीति बनाने वाले हैं तो वो कहां से अनैतिक कार्य कर सकते हैं, सारे कर्मों का फल श्री कृष्ण ही प्रदान करते हैं। तो दुर्योधन ने भी ऐसे कितने सारे अन्याय किए थे, दुर्योधन को अपने कर्मों का फल मिलना था तो श्री कृष्ण ने भीमसेन को चुना कर्मों का फल प्रदान करने के लिए, इसमें कोई अनैतिकता नहीं है। और श्री कृष्ण परम सत्य है, जो भी वो कहते हैं वो परम सत्य है। तो खैर जब ऐसे हो गया, अश्वत्थामा को बड़ा गुस्सा आया क्योंकि अश्वत्थामा दुर्योधन के दोस्त थे, उन्होंने जाकर सोचा कि जिस तरह से उन्होंने धर्म के नियमों का उल्लंघन करके मेरे मित्र को मार डाला है, उसी प्रकार से मैं भी द्रौपदी के पांच पुत्रों की हत्या करूंगा। और जब ये पांचों पुत्र सो रहे थे उस समय अश्वत्थामा ने जाकर उनकी हत्या कर दी, जो कि बहुत ही एक जघन्य कार्य है क्षत्रिय के लिए, सोए हुए आदमी को मारना ये तो बहुत ही कायरता का लक्षण है। तो जब अर्जुन को पता चला तो बहुत गुस्सा आया, अर्जुन ने पीछा किया अपने रथ के ऊपर अश्वत्थामा का, अश्वत्थामा पीछे मुड़कर देख रहा था, घबराते घबराते भाग रहा था, लेकिन अर्जुन और भी पीछा करते जा रहे थे, आखिर पकड़ लिया। लेकिन उसके पहले डर के मारे अश्वत्थामा ने सबसे भयंकर अस्त्र ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और अर्जुन को पता नहीं चला कि अचानक ये क्या है, हजारों कोटि कोटि सूर्य के समान यहां तेज आ रहा है, हमारी ओर आ रहा है, ये क्या है। कृष्ण का शरण लिया अर्जुन ने कि क्या हो रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो फिर भगवान कृष्ण ने कहा कि चिंता नहीं करो, ये अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र हैं उनका काम है। अब डर के मारे अपने प्राण से डर के प्राण के जाने के डर से उसने ये ब्रह्मास्त्र तुम्हारे ऊपर छोड़ा है, तो तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ो। तो अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा, दोनों ब्रह्मास्त्र आसमान में टकराए और भीषण प्रलय के समय जैसे अग्नि होती है, जैसे प्रकाश होता है, वैसे हुआ और सारे ब्रह्मांड में जो है उत्पात मच गया। फिर श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मास्त्र दोनों को वापस ले लो। अश्वत्थामा को मालूम नहीं था ब्रह्मास्त्र वापस कैसे लेना, कैसे छोड़ना उतना ही मालूम था, लेकिन अर्जुन को मालूम था कैसे छोड़ना, कैसे वापस बुलाना। आजकल के जो अस्त्र होते हैं एक बार छोड़ दिया वापस बुला नहीं सकते, लेकिन पुराने जमाने में ऐसे वैदिक मंत्रों के आधार पर अस्त्र छोड़ते थे, छोड़ भी सकते थे बुला भी सकते थे। तो अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को फिर से खींच लिया वापस और फिर गिरफ्तार किया और अश्वत्थामा को दंड दिया गया। वैसे उचित था कि उसकी मृत्यु की जाए, मृत्यु दंड दिया जाए, क्योंकि उसने 5 निर्दोष व्यक्तियों को सोते हुए मार डाला था, परंतु द्रौपदी देवी ने आश्चर्यजनक जो कृपा है वो दिखाया और कहा कि नहीं, जो मेरी दशा है वो अश्वत्थामा की मां की दशा नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं चाहती हूं कि इसके ऊपर कृपा करनी चाहिए। सब लोग विस्मित हो गए, क्या बोल रही है द्रौपदी। युधिष्ठिर महाराज ने हां में हां मिलाया, भीमसेन अर्जुन कृष्ण नहीं माने। फिर अर्जुन को कृष्ण ने इशारा किया तुमको कुछ तरकीब निकालनी चाहिए, अर्जुन ने इशारा ले लिया और अश्वत्थामा के जो बाल हैं वो काट दिए, जो सर के बाल वो काट दिए, जिससे कि मारने के बराबर है नहीं मारने के बराबर, दोनों साथ में हो गए, मारा भी नहीं भी मारा, और फिर अश्वत्थामा को छोड़ दिया अपमानित करके। दुर्योधन को ये पसंद नहीं आया था, जब उन पुत्रों की हत्या की थी द्रौपदी की, उस समय जब अश्वत्थामा खुश होकर दुर्योधन के पास गए थे खुशखबरी देने के लिए, मैंने 5 सोए हुए पुत्रों को मार दिया द्रौपदी के, अश्वत्थामा ने सोचा दुर्योधन बहुत खुश हो जाएगा, लेकिन दुर्योधन खुश नहीं हुए, दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ कि तुमने क्या किया, सोए हुए व्यक्तियों को तुमने मार डाला, ये ठीक नहीं किया, और ऐसे शोक करते करते दुर्योधन की मृत्यु हो गई। तो खैर अब अपमानित करके अश्वत्थामा को भेजा गया। उधर श्री कृष्ण ने पांडवों के साथ सारे अंतिम क्रियाएं करने के लिए सारी व्यवस्था की, अंतिम क्रियाएं समाप्त हो गईं, लेकिन अचानक जब श्री कृष्ण द्वारका के लिए प्रस्थान करने के लिए तैयार हो रहे थे, क्योंकि अब कई महीने हो गए थे वो पांडवों के साथ में रहे थे, वापस जाने का समय आ गया था, द्वारका में भी उनके भक्त उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, तो उस समय उत्तरा जो कि अभिमन्यु की पत्नी थी वो दौड़ते हुए उनके पास आई, त्राही त्राही मुझे बचाओ हे कृष्ण, क्योंकि एक बहुत खतरनाक अस्त्र मेरी ओर आ रहा है मेरे गर्भ का नष्ट का नाश करने के लिए। आपको तो पता है कि अभिमन्यु की हत्या तो 6 महारथियों ने की थी युद्ध भूमि पर, जो कि अनैतिक था, उसमें दुर्योधन भी शामिल थे, भीष्म शामिल थे, द्रोणाचार्य शामिल थे, उन्होंने अनैतिक ढंग से अभिमन्यु की हत्या की थी। इसलिए अगर भीष्म का, द्रोणाचार्य का तथा कथित अनैतिक दृष्टि से मृत्यु हो गया तो वो इसी कारण हुआ कि उन्होंने भी ऐसे किया था एक 16 साल के युवक के प्रति। तो इस समय अश्वत्थामा ने दोबारा ब्रह्मास्त्र छोड़ा, इस बार पांडवों के आखिरी वंशज के ऊपर, महाराज परीक्षित जो कि उत्तरा के गर्भ में थे, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे। और उस समय श्री कृष्ण ने समझ लिया कि क्या हुआ है, उस समय उन्होंने अपनी ही शक्ति से, अपने सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को रोका और स्वयं वो उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और अपने ही जो तेजस्वी रूप को दिखाते हुए, उस गर्भ को दिखाते हुए वो उस गर्भ के ऊपर प्रदक्षिणा करते करते रहे और वो बच्चा जो गर्भ के अंदर वो देखता रहा कि ये कौन सा सुंदर दृश्य है, ये कौन है ये व्यक्ति, और बाहर आते आते भी उस व्यक्ति को ढूंढते रहा। वो बच्चा परीक्षा कर रहा था, इसलिए उनका नाम हुआ परीक्षित। तो फिर श्री कृष्ण उत्तरा को बचाया, उत्तरा के गर्भ को बचाया और अब निकलने वाले थे द्वारका की ओर, और इस समय कुंती महारानी वहां पर आई और कुंती महारानी ने रोका उनको, नहीं नहीं मत जाना मत जाना। और इस समय कुंती महारानी ने प्रार्थना की। ये जो कुंती स्तुति है इसका बैकग्राउंड जो है, इसका इतिहास इस प्रकार से है। वो नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण चले जाए और इस समय उन्होंने अपने हृदय की प्रार्थना व्यक्त की। और इसके बाद भी, प्रार्थना समाप्त होने के बाद भी, जब श्री कृष्ण ने सुना और फिर से चलने वाले थे, उस समय युधिष्ठिर महाराज आया, अब नहीं जाइए, तो फिर से रह गए। तो इस प्रकार से भगवान कहने के लिए तो स्वतंत्र हैं, पूर्ण स्वतंत्र हैं। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवयम मुह्यंति यत सूर्य, वो ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु अपने आप जो है वो अपने आप भक्तों के ऊपर निर्भर अपने आप को समझते हैं। ये भक्तों का प्रेम जो है वो उनको बांध के रख देता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी योजना फिर से बदल दी और फिर युधिष्ठिर महाराज के कहने पर वो युद्ध भूमि पर गए, जहां के भीष्म देव लेटे हुए थे तीरों की शैया के ऊपर। कृष्ण चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज को भीष्म देव उपदेश दें, जो भीष्म देव ने किया, और फिर श्री कृष्ण का दर्शन करते करते भीष्म देव ने अपने प्राण त्याग दिए। फिर उसके बाद में श्री कृष्ण अंततः बाद में द्वारका वापस चले जा पाए। तो कुंती महारानी की प्रार्थना सुनने के पहले हमें कुंती महारानी के बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहिए कि कुंती महारानी है कौन और कुंती महारानी का इतिहास क्या है। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की यश की शक्ति की अवतार मानी जाती हैं, सक्सेस पोटेंसी। भगवान श्री कृष्ण के अनंत शक्तियां हैं, परास शक्तिर विविधैव श्रूयते स्वाभाविक ज्ञानम बल क्रिया च। तो उनके अनेक अनंत शक्तियां हैं, उनमें से जो उनकी यश सफलता की शक्ति है उसकी अवतार कुंती महारानी मानी जाती हैं। वैसे उनके पिता का नाम था राजा शूरसेन, जो कि यदुवंश के राजा थे, मथुरा के राजा थे, और कुंती महारानी वसुदेव के बहन थी। वसुदेव जैसा आप जानते हैं वो श्री कृष्ण के पिता थे, तो उनकी बहन थी वो। बचपन से उनका नाम था प्रिथा, लेकिन जो महाराज शूरसेन के एक सौतेले भाई थे राजा कुंती भोज, उनको कोई संतान नहीं था, इसलिए उन्होंने अपनी पुत्री को प्रिथा को कुंती भोज के हवाले कर दिया, इसलिए प्रिथा का नाम कुंती भी हो गया, कुंती भोज राजा से। राजा कुंती भोज ने बड़े लाड़ प्यार से कुंती को या प्रिथा को बड़ा किया और बड़े अच्छे संस्कार दिए, और कुंती जैसे महाभारत में वर्णन है, जैसे जैसे बड़ी होती गई बहुत सुंदर थी और बहुत धर्मपरायण भी थी। साथ साथ उनका चरित्र जो है बड़ा सुशील, बड़ा आदर्श चरित्र था, जैसे कि एक महिला का होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में पुरुषों के लिए भी और स्त्रियों के लिए भी, राजाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, वैश्यों के लिए, शूद्रों के लिए, हर एक समाज के वर्ग के लोगों के लिए आदर्श हैं उदाहरण शास्त्रों में। अगर हम इन आदर्शों का पालन करेंगे तो हमारा जीवन तो सफल हो ही जाएगा, निजी जीवन, परंतु समाज भी सुधर जाएगा, समाज भी सफलता की ओर बढ़ पाएगा। तो महिलाओं को चाहिए कि वो कुंती महारानी के चरित्र को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ें, समझें, ताकि वो जान ले कि आदर्श महिला या आदर्श स्त्री क्या होनी चाहिए। तो इसी प्रकार कुंती महारानी बड़े आदर्श चरित्र की थी,
आदर्श स्वभाव की थी और बड़ी सुसंस्कृत थी और उनका उनकी सेवा थी कि जब भी न केवल पृथ्वी लोक से लेकिन स्वर्ग लोक से भी जब अतिथिगण आया करते थे, विशेष करके जो ऋषि मुनि देव देवता आया करते थे, तो उनकी सेवा करना ये उनका काम था घर में। तो घर में जब भक्त लोग आते हैं तो गृहस्थों का को खुद ही सेवा करना चाहिए लेकिन साथ साथ अपने बच्चों को भी सेवा में लगाना चाहिए। भक्तों को बचपन से ही अगर ये संस्कार पड़ जाए बच्चों में कि जब भक्त आते हैं घर में या कोई भी अतिथि आते हैं, भक्तों की बात दूर है, कोई अभक्त अतिथि भी आए तो कैसे उनका स्वागत करना चाहिए, कैसे उनका सम्मान करना चाहिए। जब अभक्त अतिथियों का ऐसे स्वागत किया जाए तो भक्तों की बात तो दूर है। तो कुंती महारानी को ऐसे अच्छा प्रशिक्षण मिला बचपन से। तो एक बार ऐसे हुआ कि दुर्वासा मुनि उनके घर में आए और प्रथा ने, क्योंकि उस समय कन्या थी, उसने बहुत अच्छी तरह से दुर्वासा मुनि की सेवा की। दुर्वासा मुनि वो तो शिवजी के अंश अवतार हैं। शिवजी का नाम है आशुतोष। आशु मतलब बहुत जल्दी और तोष मतलब जो संतुष्ट हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से शिवजी जल्दी क्रोधित हो जाते हैं वैसे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। तो दुर्वासा मुनि उनके अंशावतार होने के नाते उनका स्वभाव भी ऐसे ही था और दुर्वासा मुनि अपने क्रोध के लिए बहुत जाने माने थे। सब लोग घबराते थे दुर्वासा मुनि से, थोड़ी सी बात पे वो क्रोधित होकर शाप देते थे। तो कुंती महारानी ने, उस समय महारानी तो नहीं थी, छोटी सी बच्ची थी, कन्या थी, उसने बहुत अच्छे ढंग से दुर्वासा मुनि को प्रसन्न किया। दुर्वासा मुनि इतने खुश हो गए कि उन्होंने आशीर्वाद दिया कुंती महारानी को कि तुम इन मंत्रों का जाप करके, उच्चारण करके किसी भी देवता को बुला पाओगे अपने पास। क्योंकि दुर्वासा मुनि ने अपनी योग शक्ति से जान लिया कि इस पुत्री के जो, इस कन्या के जो पति होंगे आगे चल के, वो शायद इसके माध्यम से पुत्र उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए दुर्वासा मुनि ने यह वरदान प्रथा को दिया। आगे चल के स्वयंवर में प्रथा देवी ने महाराज पांडु को अपना वर चुन लिया। उधर पांडु के बड़े भाई धृतराष्ट्र, जो कि अंधे थे, भीष्म देव ने उनका विवाह राजा सुबल गांधार प्रांत के राजा सुबल की पुत्री गांधारी से करा दिया। ज्यादा अंतर नहीं था धृतराष्ट्र और पांडु में वय के हिसाब से, आयु के हिसाब से, और दोनों गांधारी देवी और कुंती महारानी दोनों गर्भवती हो गईं। लगभग एक समय होने वाला था किसका जन्म, कौन पहले जन्म देंगे बच्चे को, ये ठीक नहीं था, लेकिन दैव से कुंती महारानी ने बच्चे को जन्म पहले दिया। गांधारी देवी को यह वरदान मिला था कि उसके 100 पुत्र होने वाले हैं। गांधारी ने जब सुना कि कुंती महारानी को बच्चा हो गया है तो उसके मन में बहुत ईर्ष्या हो गई, गुस्सा आ गया। वैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि गांधारी भी चरित्र से बहुत आदर्श थी, बहुत प्रामाणिक थी, उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और बड़ी पतिव्रता भी थी, धार्मिक थी, हर दृष्टि से योग्य थी, लेकिन फिर भी प्रभुपाद कहते हैं कभी कभी महिलाओं के हृदय में ऐसी ईर्ष्या आ जाती है। उन्होंने देखा कि अरे हमारे उसको, कुंती को ऐसे पहले बच्चा हुआ मेरे से पहले, अभी वो सबसे बड़ा बच्चा होगा हमारे खानदान में, तो उसको गुस्सा आया, गुस्से से अपने पेट को उसने मुक्का प्रहार किया, अपने ही पेट को गुस्से से, और इसकी वजह से एक मांस का टुकड़ा जन्म लिया। लेकिन गांधारी को व्यास देव में बहुत श्रद्धा थी तो व्यास देव की कृपा से उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इसके 100 टुकड़े करो, अलग अलग इसमें द्रोण में रखो और इसे 100 पुत्र हो जाएंगे, और वैसे हो भी गए। इसलिए गांधारी के फिर 100 पुत्र हो गए। आजकल जो मेडिकल विज्ञान में ऐसे किसी बच्चे को गर्भ के बाहर से
जन्म देने की का प्रयत्न करते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरह कहते हैं, बाहर जन्म लेना, लेकिन ये तो हमारे शास्त्रों में पहले से बताया गया, ये विज्ञान वेदव्यास जैसे संतों को था, ऋषि मुनियों को था, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए। द्रोणाचार्य का भी जन्म ऐसे, इसलिए तो उनका नाम द्रोण हुआ, द्रोण में उनका जन्म हुआ, गर्भ के बाहर हुआ। तो खैर ऐसे 100 पुत्र हो गए, तो लेकिन वरिष्ठ युधिष्ठिर थे। लेकिन जन्म हुआ तो कैसे हुआ? साधारण तरह से नहीं हुआ, क्योंकि पांडु को शाप मिल गया था कि आप जब संतान की उत्पत्ति करने के लिए जाओगे तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो पांडु ने जब ये सुना तो बहुत निराश हो गए, और वैसे भी उनके हृदय में वैराग्य की भावना ज्यादा थी, वो संन्यास लेना चाहते थे। कुंती महारानी ने नहीं दिया उनको संन्यास लेने के लिए, अनुमति नहीं दी। फिर कम से कम वानप्रस्थ हो जाएं, हम वन में चले जाएं। तो उस समय उनकी दूसरी पत्नी भी थी माद्री, जो मद्रास मद्र देश के राजा की पुत्री थी। दोनों पत्नियों को लेकर वो वन में चले गए, और वन में वो दोनों पत्नियों के साथ रहा करते थे। जब संतान का प्रश्न आया तो ये शाप याद आया महाराज पांडु को। फिर महाराज पांडु ने ही निवेदन किया कुंती महारानी से, क्योंकि वो बहुत उदास थे कि हमारे पुत्र नहीं हो सकते। तो कुंती महारानी उनको बताया कि ऐसे मुझे वरदान मिला था बचपन में दुर्वासा मुनि से। तो फिर पांडु महाराज को आश्चर्य हुआ कि फिर ठीक है, ऐसे करना चाहिए। कुंती महारानी ने कहा, नहीं, मैं तो आपकी पत्नी हूं, मैं तो ऐसे कैसे कर सकती हूं, मुझे नहीं करना है। बिना संतान के हम रहे कोई बात नहीं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर पांडु महाराज ने और अन्य ऋषि मुनियों ने उनको समझाया कि ऐसे परिस्थिति में वंश को आगे बढ़ाने के, राज्य को संभालने के लिए इसमें कोई दोष नहीं है। फिर बहुत समझाने से, कहने से कुंती महारानी ने स्वीकार किया ये प्रस्ताव, और फिर उन्होंने धर्मदेव, जो धर्म के देवता हैं, उनका स्मरण किया इस मंत्र का उच्चारण करते करते। और उस समय धर्मदेव वहां पर उपस्थित हुए, और उन्होंने कहा कि जब मैं आया हूं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। फिर आगे चल के कुंती महारानी गर्भवती हुई, और जैसे ही इस बच्चे का जन्म हुआ तो एक आकाशवाणी आई। कहां से आई, कौन बोल रहा था, ये सुनाई नहीं पड़ा, और ये आकाशवाणी कहने लगा कि इस बच्चे का नाम होगा युधिष्ठिर, ये बहुत धर्मपरायण होगा, बहुत यशस्वी होगा, बहुत प्रसिद्ध हो जाएगा, और इसलिए आपका यश ये बढ़ाएगा। तो कुंती महारानी और पांडु महाराज बड़े खुश हुए इस खबर को सुनकर। फिर पांडु महाराज ने कहा, दोबारा आप करना चाहिए, इस बार मुझे कोई शक्तिशाली एक पुत्र चाहिए। पहला पुत्र सबसे वरिष्ठ पुत्र, बहुत धार्मिक धर्मपरायण पुत्र है, बहुत अच्छी बात है, चरित्र से, स्वभाव से आदर्श। अब मुझे एक बहुत बलवान पुत्र चाहिए। तो फिर कुंती महारानी ने वायुदेव को बुलाया अपने मंत्र के द्वारा। वायुदेव भी आए, और फिर कुंती महारानी दूसरी बार गर्भवती हुई पांडु के साथ रहते हुए। और जब बच्चे का जन्म हुआ उस समय और एक आकाशवाणी हुई, और ये घोषणा हुई कि ये पुत्र हजारों हजारों व्यक्तियों की तरह बलवान होगा, 10,000 हाथियों की शक्ति इसमें होगी। और फिर दो बच्चों को जन्म होने के बाद पांडु महाराज ने कहा, अब एक साल और तुम तपस्या करो। एक साल तपस्या करने के बाद फिर पांडु ने कहा कि अब और मुझे एक संतान लड़का चाहिए जो शस्त्र में बहुत निपुण होगा, शस्त्र चलाने में। तो इस समय कुंती महारानी ने इंद्र का आह्वान किया, इंद्रदेव वहां पर उपस्थित हुए, और फिर तीसरी बार पांडु के साथ रहते हुए कुंती महारानी गर्भवती हुई। और बच्चे का जन्म होते समय आकाशवाणी हुई कि ये बच्चा कार्तवीर और शिव की तरह शक्तिशाली होगा, इंद्र की तरह वो कभी भी युद्ध में पराजित नहीं होगा, सारे अस्त्र शस्त्र की विद्या उसके पास होगी, वो प्राप्त करेगा और आपको सब जगह प्रसिद्ध कराएगा ये लड़का। तो ये लड़का था अर्जुन, दूसरे नंबर के लड़के थे भीम और पहला युधिष्ठिर। इस प्रकार के से तीन लड़के हुए कुंती महारानी के, और वो पांडव पुत्र माने जाते हैं। और उसके बाद में माद्री से दो पुत्र हुए। जब पांडु ने देखा, जब माद्री ने देखा कि ऐसे कुंती महारानी के तीन पुत्र हुए, उसके मन में भी इच्छा हुई मेरे भी पुत्र होने चाहिए। तो वो गए पांडु के पास कि आप बोलिए कुंती महारानी को कि मेरे लिए भी ये मंत्र बोले। तो जब पांडु ने कहा तो कुंती को स्वाभाविक रूप से अच्छा नहीं लगा कि अरे मैं उसके लिए क्यों करूं, हालांकि वो दोनों बहनों की तरह रह रही थी, लेकिन फिर भी थोड़ा स्वभाव था कि नहीं मेरे पुत्र उसके नहीं होने चाहिए। कहा ठीक है लेकिन एक ही बार बोलो। तो एक बार बोल दिया लेकिन मुझे जुड़वे चाहिए। तो कुंती माँ ने सोचा चीटिंग हो गया एक बार में, लेकिन फिर भी वचनबद्ध थी, उन्होंने दे दिया। और फिर अश्विनी कुमारों को बुलाया गया, अश्विनी कुमार आए और फिर नकुल सहदेव, इन दोनों का जन्म हो गया। तो ये पांचों पुत्रों को पांडव कहते हैं, पांडु के पुत्र पांडव। वास्तव में जैसा कि आप जानते हैं युधिष्ठिर के जन्म के पहले भी कर्ण का जन्म हुआ था। जब एक बार शादी के पहले ही जब कन्या थी कुंती, तो उसने ऐसे मजाक में सोचा जैसे छोटे कन्याएं या करते हैं कभी, कुछ देखते हैं ये मंत्र दिया है दुर्वासा मुनि ने, ये सच्चा है कि ऐसे ही बस दिया उन्होंने, काम करता है कि नहीं करता है। तो यूं उन्होंने सूर्यदेव को देखते देखते ये मंत्र का उच्चारण किया, सूर्यदेव वहां खड़े हो गए आगे सामने, अरे ये क्या हो गया, आप कैसे आ गए इधर, बुलाया आपने मंत्र के द्वारा मैं आ गया। तो फिर उसने कहा ठीक है अभी आप चले जाइए अभी बस मैंने गलती हो गई, जब मैं आया हूं तो मुझे इस मंत्र का जो बल है उसको पूर्ण करके ही जाना, जो उद्देश्य है दुर्वासा मुनि ने आपको ये मंत्र दिया था संतान उत्पत्ति के लिए तो होना ही है। नहीं नहीं कैसे होगा, मेरा विवाह नहीं हुआ। नहीं कोई बात नहीं, मैं देवलोक का निवासी हूं इसलिए संतान की उत्पत्ति होगी तुमसे, लेकिन तुम कन्या ही रहोगी, इसके बारे में तुम चिंता नहीं करना। फिर कोई और मार्ग नहीं था, फिर कर्ण का जन्म हुआ, क्योंकि सूर्य देव के कर्ण के कुंडल जो है वो साथ में रहे, साथ उसके साथ ही वो जन्म लिया। लेकिन कुंती ने फिर सोचा कि ये कैसे हो सकता है, समाज में क्या होगा, तो उसने एक टोकरी में नदी में उसको डाल दिया। फिर आगे चल के कर्ण को एक रथ चलाने वाले व्यक्ति ने, जिसका नाम था अधिरथ और जिसके माता पत्नी का नाम था राधा, उसने ढूंढ निकाला नदी में, बड़े खुश हो गए क्योंकि अधिरथ और राधा के पुत्र नहीं थे, तो बड़े खुशी से उसके बच्चे को ले आए, उसको पाला पोसा, उसका नाम हो गया कर्ण और उसका नाम राधेय भी है क्योंकि राधा का पुत्र। तो खैर ऐसे कुंती महारानी जानती थी, बाद में कुंती महारानी को पता चला कि ये मेरा ही पुत्र है, और युद्ध के समय अच्छी तरह से मालूम था लेकिन अपने बच्चों को नहीं बताया। जब कर्ण की हत्या हो गई कुरुक्षेत्र के युद्ध में, कुंती महारानी को बहुत दुख हुआ। उसके बाद कुंती महारानी ने युधिष्ठिर महाराज को बताया, सारे पांडवों को बताया, फिर बहुत दुख हुआ पांडवों को कि आपने पहले क्यों नहीं बताया हमको, हम कर्ण को राजा कर देते थे। युधिष्ठिर महाराज ने कहा हमको कोई इच्छा नहीं थी, मैं वरिष्ठ हूं इसलिए मुझे विवश होकर इस गद्दी के लिए युद्ध करना पड़ रहा है, मैं तो पहले सबसे पहले कर्ण को राजगद्दी पर बिठा देता, आपने क्यों नहीं बताया। तो बहुत डांटा अपने मां को, बताना चाहिए था मुझे, लेकिन कुंती महारानी ने कहा नहीं मुझे, मेरे लिए बताने योग्य नहीं था, उचित नहीं था। तो खैर इस प्रकार से पांच पांडव बड़े होते गए कुंती महारानी के प्रेम से, बहुत कष्ट झेले पांडवों ने, साथ साथ कुंती महारानी ने भी। जब वनवास में भेजा गया उनको तो कुंती महारानी भी उनके साथ में थी। ये सब जवान थे लेकिन कुंती महारानी की उम्र हो गई थी, फिर भी उनके साथ साथ वन के कष्टों को वो झेलते रह गई। और कितना दुख उन्होंने सहन किया जिसका वर्णन वो आगे अपने प्रार्थना में बोलने वाली हैं। और जब वो एक चक्र में गए थे, वहां ब्राह्मण के घर में रहे थे, तो उस समय कुंती महारानी ने आदेश दिया भीमसेन को कि जाके इस बकासुर जो राक्षस है उसका वध करो, जो कि इस गांव के सारे प्राणियों को मनुष्य सारे पांडव कुंती महारानी और द्रौपदी को लेकर, द्रौपदी उस समय आई नहीं थी, तो एक राक्षसी थी जिसका नाम था हिडिंबा, वो भीम से विवाह करना चाहती थी। भीम ने इनकार कर दिया लेकिन हिडिंबा युधिष्ठिर महाराज और कुंती महारानी के पास आई। उन दोनों ने भीमसेन को आदेश दिया कि नहीं, विवाह करना। फिर उनका संतान हुआ जिसका नाम था घटोत्कच, जिसने पांडवों की बहुत मदद की कुरुक्षेत्र के युद्ध में, और आखिर घटोत्कच की मृत्यु भी युद्ध में ही हुई। और फिर कुंती महारानी ही थी जिन्होंने युधिष्ठिर महाराज को आदेश दिया कि पांचाल देश में आप जाओ, और वहां पर स्वयंवर था, स्वयंवर में अर्जुन जीत गए। और जब अर्जुन वापस आए घर में तो कुंती महारानी से कहने लगे, मां देखो हम क्या लाए हैं तुम्हारे लिए। तो हमेशा की तरह, क्योंकि जो भी भीम या अर्जुन जो भी लाते थे वो कहते थे कि बांट लो अपने आपस में, भोजन होता था और क्या होता, और क्या ला सकते हैं, क्योंकि पांच लोग, पांच बड़े बलवान लोग थे तो बांट कर खाते थे। तो कुंती महारानी ने कहा जो भी लाए वो आपस में बांट लो। सब सोचे अरे ये क्या बोल दिया अपनी माँ ने, अरे माँ हम तो स्वयंवर में जीत के आए हैं, द्रौपदी देवी आई हैं, पांचाल राजा की पुत्री, द्रुपद राजा की पुत्री। तो कुंती महारानी हैरान हो गया, अरे मैंने क्या कह दिया, अब क्या होगा। फिर सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया कि अब क्या करना चाहिए, अब ये वचन तो मेरे मुंह से निकल गया कि आपस में बांट लो। बांट लो कैसे बांट लो, ठीक है एक राजे के कई रानियां हो सकती हैं लेकिन एक स्त्री के इतने अनेक पति ये कैसे हो सकते हैं। तो फिर बहुत चर्चा हुई शास्त्रों के आधार पर। फिर युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हाँ ऐसे ऐसे एक प्रमाण है शास्त्र में, आपको मालूम है कौन सा प्रमाण है कि पहले ऐसे हुआ इतिहास में, श्रीमद् भागवत में आता है ये। प्रचेता दस भाई थे जो राजा प्राचीन बहिष्यत के पुत्र थे, और मारीशा नाम की पुत्री जो अप्सरा की पुत्री थी, जो अप्सरा उसको वहां छोड़कर चली गई थी जंगल में, और फिर सोमदेव ने उसको बड़ा किया था, फिर उसका विवाह उनसे हुआ प्रचेताओं से, और फिर दक्ष जो है उनके पुत्र के रूप में फिर से आए दोबारा। तो ऐसे इतिहास में उदाहरण है, हालांकि बहुत ही रेयर है, दुर्लभ है, फिर भी ऐसे विवाह इनका हो गया। तो खैर इस प्रकार से कुंती महारानी पांडवों के साथ रही, हमेशा के लिए रही, और आखिर में बहुत बहुत कष्ट झेले। जब उनको राज्य वापस प्राप्त हुआ वो वापस हस्तिनापुर आई, और गांधारी के साथ उनका बहुत प्रेम था, हालांकि केवल पुत्रों पर, वरिष्ठ पुत्र के जन्म के समय थोड़ी ईर्ष्या गांधारी के मन में हुई थी, लेकिन इसके अलावा दोनों गांधारी और कुंती महारानी के बीच में बहुत प्रेम था। जब विदुर गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर गए वन में, महाभारत में ऐसे वर्णन आता है कि कुंती महारानी भी उनके साथ चली गई, और फिर वहां पर ऐसे बताया जाता है कि 30 दिन में एक बार वो खाया करती थी, कुछ भोजन लेती थी, बहुत तपस्या उन्होंने की गांधारी के साथ। और दोनों गांधारी और वो जब ध्यान में बैठी हुई थी तो एक दावानल आ गया, जंगल में आग लग गया, और उस आग में दोनों का शरीर भस्म हो गया और वापस भगवान के धाम चले गए। उसके पहले धृतराष्ट्र ने भी ऐसे तपस्या करके अपने देह को भस्म कर दिया था और जीवन की परिपूर्णता प्राप्त कर ली थी। तो इस प्रकार से कुंती महारानी का इतिहास बड़ा सुंदर है। भगवान की महान भक्त हैं
कुंती महारानी वात्सल्य रस में भगवान की सेवा करती हैं, और इन प्रार्थनाओं को जब हम सुनते हैं तो हमें बहुत प्रेरणा मिल सकती है, बहुत ज्ञान मिल सकता है, बहुत उत्साह हमारे भक्ति मार्ग में मिल सकता है। तो कैसे कैसे परिस्थितियों में से कुंती महारानी और पांडव गुजरे, फिर भी उनकी श्रद्धा कैसी अटल रही, अटूट रही, उनका प्रेम कैसे हर परिस्थिति में कठिन से कठिन परिस्थिति में बढ़ता गया, उसका घटन नहीं हुआ। तो कल से इन प्रार्थनाओं को हम पढ़ेंगे। आज समय नहीं, 9 बज गए, लेकिन आज एक बैकग्राउंड था कुंती महारानी की प्रार्थनाओं के लिए, और कल से इन प्रार्थनाओं को जो श्लोक है उनको, इनकी चर्चा हम करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के ऊपर जो थी वो हटाई, जो अपमान करने के समान था, अपमान ही हो गया, मृत्यु के बराबर था, तो वहां से हटा दिया जो कि अपने सर से जुड़ा हुआ था। तो उसके बाद उनको वो कभी ठीक नहीं हुआ, और उस अपमान से कभी वो रिकवर नहीं हुए। स्नेहात
पहले युग में स्त्री को कुछ विद्या अर्जन करने के लिए अनुमति नहीं,
नहीं विद्या ग्रहण करने के लिए नहीं, बाहर नहीं जाया करते थे। जैसे लड़के जो है उनको गुरुकुल में भेजा जाता था, एक गुरु को नीचे पढ़ते थे, ऐसे महिलाओं को लड़कियों को कोई भेजा नहीं जाता था। शिक्षण मिलता था परंतु घर के अंदर मिलता था, और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी माँ की। माँ अच्छी शिक्षण दिया करती थी, फिर घर में बुजुर्ग थे उनसे शिक्षण मिलता था, संत लोग आते थे, बच्चियां भी बैठा करती थी, सुनती थी क्या बोल रहे हैं संत लोग, क्या कथा बोल रहे हैं, क्या कीर्तन कर रहे हैं। तो ऐसे सारे वातावरण से उनको ऐसे उपदेश मिल जाता था। कभी कभी उनको सिखाने के लिए भी ऐसे कोई विशेष अध्यापिकाओं को या ऐसे अध्यापकों को बुलाया करते थे, बाहर नहीं जाते थे।
गार्गी का जो उल्लेख
आते, ये बहुत विशेष ऐसे उदाहरण है, जैसे गार्गी याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी, ऐसे बहुत दुर्लभ है, विशेष विशेष ऐसे उदाहरण है। गार्गी बहुत आगे बढ़ चुकी थी। दो प्रकार की महिलाएं हैं जिनका वर्णन वैदिक शास्त्र में आता है। एक तो साधारण महिला है, साधारण मतलब जो साधारण पद्धति से चलती थी, और दूसरी है जो ऐसे वेद मार्ग में बहुत आगे चल चुकी थी। ऐसे महिलाएं जो है बहुत विद्वान हुआ करती थी, लेकिन दुर्लभ, संख्या में बहुत कम ऐसे दिखाई पड़ती थी गार्गी जैसे। तो माता पिता हमें कॉलेज स्कूल अच्छे संस्कार प्राप्त करने के लिए भेज देते हैं, लेकिन आजकल स्कूल कॉलेज में ऐसा वातावरण नहीं है बल्कि उससे विरुद्ध है। तो हम क्या करें, उससे हमारा मन इधर उधर होता है। स्कूल कॉलेज से अच्छा वातावरण हमारे घर में है, तो क्या हम स्कूल कॉलेज जाएं या घर में संस्कार लें? किसी विद्यार्थी ने यह प्रश्न पूछा होगा। हाँ, ये समस्या बहुत सही है, सही बात है ये कि आजकल स्कूल कॉलेज में इतना बुरा वातावरण हो गया है, कॉलेज का तो बात ही कहना नहीं, दूर है। स्कूल में भी आजकल ऐसे ही होते जा रहा है। एक भक्त बता रहे थे उनके स्कूल में भी आजकल लोग आते हैं, अंधश्रद्धा निर्मूलम जो भी है, और वो आके उनको प्रवचन देते हैं कि कैसे भगवान में विश्वास करना ये अंधश्रद्धा है, कहाँ है स्वर्ग, कहाँ है नरक तुमने देखा है, कहाँ है भगवान तुमने देखा है। तो ऐसे जोरदार प्रवचन देते हैं कि बेचारे मासूम बच्चे वो हिल जाते हैं, उनको लगता है कि हाँ भगवान है ही नहीं। तो ऐसे स्कूल में भी आजकल, कॉलेज की बात दूर है, स्कूल में भी आजकल बुरे संस्कार हो गए हैं, लेकिन घर भी क्या ज्यादा पीछे हैं आजकल? घर में क्या चलते हैं? बुजुर्ग भी दिन भर टीवी खोल के बैठते हैं, इधर सिनेमा बैठ में जाओ, इधर होटल में जाओ, इधर ये करो वो करो, दिन भर केवल संसार की बातें, कोई आध्यात्मिक वातावरण घर में नहीं। तो आजकल घरों में भी ऐसे चल रहा है, बाहर समाज में भी चल रहा है, सब जगह वातावरण प्रदूषित। एक ही उपाय है, सत्संग में आना है। सत्संग में आकर अपने आप को आध्यात्मिक दृष्टि से शक्तिशाली बनाना है, जिससे कि
हम अपने घर को ही एक मंदिर बना सकते हैं। फिर अपना घर जब शुद्ध हो जाएगा, घर में परिवार के सदस्यों के संग हर रोज संकीर्तन करना, हमेशा कृष्ण कथा करना, और फिर मंदिर में आके फिर से बैटरी को चार्ज कर लेना, फिर से घर में जाना, फिर इस प्रकार से घर और मंदिर से फिर हमारे दोनों चीजें सुरक्षित हो सकती हैं। फिर पढ़ाई लेने के लिए हमको जाना पड़ता है, क्या करें, और कोई उपाय नहीं है आजकल। तो जब हमारी संस्था आगे बढ़ेगी और संस्था के ऐसे स्कूल हो सकते हैं, गुरुकुल जैसे और कोई स्कूल हो सकते हैं, तो तब फिर बच्चों के लिए कुछ व्यवस्था हो सकता है। तब तक हमें ऐसे ही करना है, घर और मंदिर में ज्यादा समय देकर स्कूल कॉलेज में जितना आवश्यक है उतना ही संग करके वापस आना है। भीम ने बकासुर को मारा था तो तब भगवान वृंदावन में जो आया था तो वही है क्या? नहीं, ये दूसरे हैं। वृंदावन के बकासुर अलग हैं और यहाँ का भीम ने जो बकासुर का वध किया वो अलग है। ऐसे कहा जाता है कि कुंती ने कर्ण के जन्म की बात, ये प्रश्न, अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं क्या? हाँ, अभी तक जीवित हैं और वो आगे चिरंजीवों में से माने जाते हैं। आगे चल के भी उनको महत्वपूर्ण स्थान मिलने वाला है, ऐसे भागवत में वर्णन है। वो भगवान की लीला में भाग ले रहे थे। कुंती महारानी का स्वरूप गोकुल में क्या है, गोलोक में क्या है? जैसे हमने बताया, वो भगवान श्री कृष्ण की यश की शक्ति है, उनका अवतार है। प्रश्न ये है कि क्या ये सही है कि जब युधिष्ठिर महाराज को ऐसे पता चला कि कुंती महारानी ने जब उनको बताया कि कर्ण भी हमारे पुत्र, हमारे मेरा पुत्र है, युधिष्ठिर महाराज को इतना दुख हुआ कि उसने ऐसे स्त्री जाति को शाप दिया कि आज से जो स्त्रियों के अंदर कुछ रहस्य रहेगा नहीं। हाँ, यही प्रश्न है। हाँ, क्या ये सही है? हमने ऐसा नहीं सुना है।
अरे
हरे कृष्ण,
अपना क्वेश्चन, जैसे पांडु महाराज ने जब रिक्वेस्ट करते हैं कुंती महारानी से कि संन्यास लेने के लिए, मतलब क्या दिस इज द ये रूल है कि दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर वाइफ? हमारे जो स्थान के कुछ सन्यासी वरिष्ठ है जिन्होंने हमेशा हमको ऐसा पता चला है कि उन्होंने किसी से परमिशन नहीं लिया, डायरेक्ट प्रभुजा से सन्यास लिया, तो कुछ एक्सप्लेनेशन?
प्रभुपाद साधारणतः पत्नी से अनुमति भी कर लेने के लिए कहते थे, लेकिन आजकल साधारण जीवन में ऐसे प्रोत्साहन नहीं दिया जाता लोगों को कि वो ऐसे जल्दी से सन्यास ले। आजकल सन्यास का समय नहीं है, बहुत ही कम लोग हैं जो ऐसे ले पाएंगे सन्यास, और जितने भी थोड़े बहुत केस हुए थे वो रेयर थे बहुत, और उस ज्यादा से ज्यादा हम देखते हैं कि उन्होंने अनुमति ली थी और फिर उनको भी, वो भी इतने पक्के भक्त थे इसलिए वो दे पाए, पक्के भक्त थी वो, इसलिए वो समझ पाए कि ये क्या है, ये संबंध, इस दुनिया का संबंध क्या, कितने दिनों के लिए ये लेना आवश्यक है। लेकिन साधारणतः सन्यास सबके लिए नहीं है, और आजकल के जमाने में भी जितना हम भक्ति में जोड़ देंगे फिर खुद पर आगे की बात आगे देखना है।
जब पांडु महाराज मतलब अपना ध्येय त्याग किया तो मतलब उस टाइम पर सती का प्रथा था, तो कुंती महारानी मतलब सती प्रथा को फॉलो नहीं करी, कुछ रीजन ऐसा कुछ?
वैसे कुंती महारानी अग्नि में प्रवेश करना चाहती थी पांडु की मृत्यु के बाद, परंतु फिर माद्री ने कहा कि नहीं, आप वरिष्ठ रानी हैं, आप रहिए, मैं सती करती हूँ, मैं अग्नि में प्रवेश करती हूँ, क्योंकि आप सारे पांच बच्चों का देखभाल कर सकते हैं। फिर सारे जो ऋषि मुनि उपस्थित थे वहां, जैसे
सत्यशृंग इत्यादि, उन सब ने कहा कि हाँ यही ठीक है। तो फिर माद्री ने सती, मादी सती को प्राप्त हुई और कुंती महारानी जीवित रह गई। नहीं तो कुंती महारानी चाहती थी अग्नि में प्रवेश करने के लिए।
जब धृतराष्ट्र ने ये अग्नि में जल रहे थे तो भागवत में ऐसा आता है कि गांधारी ने भी मतलब अग्नि में प्रवेश किया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन नहीं है कि कुंती महारानी भी वही पर थी। मतलब
भागवत में नहीं है, ये महाभारत में आता है। भागवत में इतने विस्तार में इस बात, इस लीला का वर्णन नहीं है, लेकिन महाभारत में विस्तार में आता है इसका वर्णन।
द्रौपदी सब बेल्ट गोल्डन मैगनेट पड़ा था, पतिव्रता स्त्री माना जाता है।
बिल्कुल, कैसे बात, फिर कैसे पतिव्रता बताइए। हाँ हाँ जी, एक एक साल। हाँ एक पति के साथ एक समय एक ही पति के साथ, तो उस समय एक साल में फिर और कोई नहीं, एक ही पति के साथ। ये सब चीजें आजकल कलयुग में संभव नहीं है। सब पुराने जमाने के हम समझ सकते, कल्पना कर सकते कि वैदिक सभ्यता क्या थी उस समय।
पांडु को श्राप मिला था कि और जब पुत्र उत्पन्न करे जाएंगे तो उनका मृत्यु होगा, तो उनकी मृत्यु कैसे होगी?
जब वो संतान उत्पत्ति करने के लिए गए उस समय मृत्यु हो गया, वही शाप ही काम कर दिया।
देवता ने उनके पुत्र दिए ना उनको,
तीन पुत्र उनको, तीन देवता आए ना, जो धर्मदेव हैं, वायुदेव और इंद्रदेव, उनसे तीनों पुत्र हो गए जैसे वर्णन किया।
बाद में अश्विनी कुमार आए,
बाद में अश्विनी कुमार जिनसे नकुल सहदेव आए। ठीक है, बहुत प्रश्न क्यों मिला, क्योंकि वो शिकार कर रहे थे और उस समय एक ऋषि और अपनी पत्नी वेश बदलकर एक पशु के शरीर में थे, जो संतान उत्पन्न करने की चेष्टा में थे, और उस समय उन्होंने तीर मारा, तो उस ऋषि ने जो कि हिरण के रूप में था, उन्होंने श्राप दिया कि जैसे आपने हमारी हत्या ऐसे समय की, आप भी जब संतान उत्पत्ति करने जाओगे आपकी भी मृत्यु होगी। मैं भीष्म थे कि नहीं ठीक से याद नहीं, लेकिन बुजुर्ग दुर्योधन तो थे और कोई छह कुल मिलाकर थे, कर्ण भी थे। सहदेव को हाँ, सहदेव बड़े बुद्धिमान ऐसे माने जाते थे, पांचों पांडवों में से बड़े बुद्धिमान थे वो। ज्योतिष शास्त्र के बल से उनको पता हुआ भी होगा, लेकिन कभी इस बात को उन्होंने किसी को बताया नहीं। लेकिन कुंती महारानी ने अपने मुंह से किसी को नहीं बताया, केवल जब कर्ण की मृत्यु हो गई उसके बाद ही कुंती महारानी ने इस बात को खोल दिया, इस रहस्य को खोल दिया। तब तो कुंती महारानी ने नहीं कहा था इस बात को।
कुंती महारानी
नहीं, उस समय नहीं गई। महाभारत में ऐसे वर्णन है कि वो इनके साथ में चले गए, गांधारी देवी के साथ। उस समय द्रौपदी गई थी, जब पांचों पांडव निकल गए, जब कृष्ण अश्वधाम लौट गए, तो उस समय युधिष्ठिर महाराज सबसे पहले चलते चलते गए, उनके पीछे पीछे भीम गए, फिर कहां जा रहे कहां जा रहे, वो भी पीछे गए वनवास में हिमालय की ओर, पीछे पीछे अर्जुन आए, पीछे पीछे सहदेव नकुल, सब चलते गए। और द्रौपदी देवी ने देखा कि मेरे एक भी पति मेरी ओर देख भी नहीं रहा है। जब छोड़ने का समय आ गया तो देखा भी नहीं पीछे, बस यूं ही छोड़ के चले गए। तो द्रौपदी देवी तो पीछे पीछे गई, फिर द्रौपदी देवी सबसे पहले नीचे गिर पड़े। द्रौपदी देवी ऐसे गिरी, फिर एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारे गिरते गए। और फिर भीम ने अर्जुन ने पूछा युधिष्ठिर महाराज से कि द्रौपदी देवी क्यों गिर गई, अभी सब हिमालय में चढ़ते चढ़ते जा रहे थे ऊपर ऊपर। तो युधिष्ठिर महाराज ने बिना पीछे देखे हुए उत्तर दिया कि द्रौपदी का दोष था। क्या दोष था? कि हालांकि वो पांचों हमसे विवाहित थी, लेकिन अर्जुन के साथ थोड़ा पक्षपात था। फिर आगे चलते चलते फिर नकुल गिर गया। नकुल क्यों गिर गया? युधिष्ठिर महाराज ने पीछे नहीं देखा, क्योंकि उसको उसका अंदर उसके अंदर एक दोष था। क्या दोष था? अपने सौंदर्य का थोड़ा गर्व था। आगे चलते चलते फिर सहदेव गिर गया। फिर अर्जुन पूछ ले क्यों सहदेव गिर गया? गिर गया मतलब वहां उनका प्राण त्याग दिया, वो आगे नहीं चल पाए, थक के वो गिर पड़े वहीं पर, क्योंकि उसको अपने बुद्धि का बहुत गर्व था। सहदेव बहुत बुद्धिमान था। फिर आगे चलते चलते फिर अर्जुन गिर पड़े। फिर भीम ने पूछा, अब तक अर्जुन प्रश्न कर रहे थे, अभी भीम ने पूछा अर्जुन क्यों गिर गया? क्योंकि अपने गर्व से उसने बहुत ऐसे व्रत लिया जिसका पालन नहीं कर पाए, कि जय व्रत को ऐसे होगा तो मैं ऐसे मारूंगा, अगर जब सूर्योदय सूर्यास्त होने के पहले मैं ये करूंगा, व्रत का पालन नहीं कर पाया। तो खैर इस प्रकार से इसने ऐसे अहंकार से अपने गर्व से ऐसे वर लिया, वरदान ये अपना कसम खाई, इसलिए वो गिर पड़ा। तो वे धीरे धीरे से दो ही बच गए। चलते चलते भीम गिर गए और गिरे गिरे वो पूछ रहे थे युधिष्ठिर मैं क्यों गिरा? तो युधिष्ठिर कहने लगे तुम्हारे अंदर दोष है। मेरे अंदर क्या दोष है? तुम खाना बहुत पसंद करते हो, तुम्हारा दोष। अब युधिष्ठिर महाराज चलते 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 गए। फिर उनके साथ आपको कथा मालूम है कि वो लोग कुत्ता था जो उनकी परीक्षा करने आया था, जो स्वयं यमराज थे वास्तव में। तो द्रौपदी देवी उनके साथ में गई थी, लेकिन कुंती महारानी उस समय नहीं गई थी। युधिष्ठिर महाराज चलते गए। सबसे श्रेष्ठ वैराग्य का प्रदर्शन उन्होंने किया। एक बार उन्होंने मन ठान लिया कृष्ण नहीं है, निकल पड़ो, अब जीने में कोई फायदा नहीं। अपने राज को ऐसे तुच्छ समझकर, अपने भाइयों को, अपने पत्नी को, सबको तुच्छ समझकर तुरंत निकल पड़े, पीछे भी नहीं देखा। उनको साक्षात्कार पूरा था कि ये संसार क्या है।
प्रभु जी, युधिष्ठिर जी नरक में होकर एक बार गए हैं, बताते हैं कि उन्होंने झूठ बोला था कि हमारा के आश्वस्त।
ऐसे महाभारत में वर्णन आता है, लेकिन भागवत का निष्कर्ष ऐसा नहीं है, क्योंकि महाभारत धर्म अर्थ काम मोक्ष का ग्रंथ है, इसलिए इसमें भले ऐसे कहा भी जाए, परंतु ऐसा नहीं हम मानते कि वो नरक में चले गए, क्योंकि वो तो भगवान के नित्य पार्षद हैं युधिष्ठिर महाराज। और वैष्णव आचार्य ऐसे बताते हैं कि अगर वो गए भी होंगे एक क्षण के लिए, तो इसलिए नहीं गए कि उन्होंने झूठ बोला, अगर गए भी होंगे तो इसलिए किए कि वो झूठ बोलने के लिए हिचकिचाए, जबकि कृष्ण उनको कहा झूठ बोलो। कृष्ण जब बोलते हैं कि झूठ बोलो, तो हमको बोलना चाहिए, वो सत्य है। फिर जो कृष्ण बोलते हैं वही धर्म है।
युधिष्ठिर महाराज को इतने धर्मराज कहते हैं, लेकिन उन्होंने द्युत कीड़ा की द्रौपदी की लाज नहीं बचाई और सबको जो है ताप पर लगा दिया, क्या धर्म पारायण है?
क्षत्रिय को अपने धर्म के अनुसार कार्य करना पड़ता है, जो प्रामाणिक क्षत्रिय है। और क्षत्रिय के लिए कहा जाता है कि अगर उसको कोई ललकारता है, या तो युद्ध में या ऐसे कोई क्रीड़ा में, तो उनको वो जो चैलेंज है, चुनौती है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अगर कोई कहेगा कि आप मेरे से युद्ध करो, और क्षत्रिय कहेगा मैंने नहीं करूंगा, नहीं कर सकता, उसको करना ही चाहिए। अगर कोई द्युत क्रीड़ा में भी उसको कहेगा, चैलेंज करेगा आओ खेलो, तो उसको स्वीकार करना पड़ता है उसके वर्ण के इसके अनुसार। इसलिए उन्होंने किया, लेकिन किया फिर देखिए क्या हुआ, उसको सहन करना पड़ा, लेकिन कहां रोकना चाहिए उसको, उनको ये पता नहीं चला। इसका मतलब ये है कि अगर भी हम कोई ऐसे कर्म करते हैं जो हमारे वर्ण के हिसाब से हैं, लेकिन फिर भी उन कर्मों के फल हमको भुगतने पड़ेंगे। इसलिए सारा उनका कुटुंब है जो क्या परिस्थिति होगी, विध्वंस हो गया उनके सारे कुटुंब में। और जहां तक द्रौपदी देवी का सवाल था, वो अपने वचन से बद्ध थे,